अय्यूब अध्याय 12, अध्याय 12 पद 1 और 2। तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। वो अपने दोस्तों से थक चुका था। वे सोचते थे कि उन्हें बहुत ज्ञान है और उसके नाजुक हालात को वे सुलझा सकते हैं। वे वास्तव में उसे वो सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे जिसकी उसे इस समय आवश्यकता थी। जब कोई ये ठान कर बैठा हो कि वो अपनी समस्याओं के बारे में अत्यधिक ज्ञान रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मन की दशा समझाना व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोगों की बातों को सुनना बड़ा ही निराशाजनक होता है। वे सोचते हैं कि उन्हें संपूर्ण ज्ञान है, परंतु सत्य तो ये है कि वे एक बात भी नहीं जानते और समझते हैं। तथापि वे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका ज्ञान उनके साथ ही नाश हो जाएगा। अध्याय 12 पद 3। परंतु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो? तुम कोई नई बात नहीं कह रहे हो, ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूं। अध्याय 12 पद 4। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वो मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वो हंसी का कारण हो गया है। तुम लोग मेरा ठट्टा उड़ा रहे हो। अध्याय 12 पद 5। दुखी लोग तो सुखियों के समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पाँव फिसला चाहते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। तुम्हारे दिन अच्छे हैं, इसलिए तुम मुझे तुच्छ समझते हो। क्योंकि मैं नाश हो रहा हूं, क्योंकि तुम कष्ट में नहीं हो, इसलिए तुम इतनी बातें कर रहे हो। यदि तुम पर ऐसी विपत्ति आ पड़े तो तुम्हारे मुंह में ये बातें न होगी। अय्यूब उनके विवाद के भ्रम की ओर संकेत करता है, क्योंकि वे कहते थे, यदि तुम धर्मी हो तो निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें धार्मिकता का प्रमाण है। ये कष्ट जो तुम पर आए हैं वे सिद्ध करते हैं कि तुमने पाप किया है। अतः अय्यूब उनके इस तर्कहीन विवाद के संबंध में कहता है। अध्याय 12 पद 6। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। अब तुम कहते हो कि ये मेरी दुष्टता का परिणाम है, परंतु डाकुओं के डेरे तो कुशल क्षेम से रहते हैं। अध्याय 12 पद 7 से लेकर 10 तक। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। उसने कहा, प्रकृति गवाही देगी कि परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की है, क्योंकि हर प्राणी का प्राण उसके हाथों में है, मनुष्य की सांस भी उसके हाथों में है। क्या तू जानता है कि पूरे जीवन के लिए तू उसके हाथों में कैसे आश्रित है? एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर अपनी संतुलित कार्य नहीं करता, उन्हें सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। ये कैसी भयानक बीमारी है जिसमें सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता है? इसमें सांस अपने आप नहीं चलती है। अतः यदि मनुष्य सो जाए तो वो मर सकता है। उसे नींद से जाकर सोचना होता है कि सांस ले, और वो सांस लेता है फिर सोता है। उनके सोने का भी एक विशेष तरीका होता है, उसे बार बार जगाकर सांस लेना पड़ता है। मैं खुश हूं कि मुझे सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, मेरी सांस चलती रहती है। बाइबल ये सिखाती है कि हमारी सांसें परमेश्वर के हाथों में हैं। आपको बेलशस्सर के जेवनार का स्मरण होगा, वो अपने 1000 शासकों के साथ उत्सव मना रहा था कि एक हाथ ने आकर दीवार पर कुछ लिख दिया। उसके घुटने थर थराने लगे थे। उसने अपने सब विद्वानों से पूछ लिया, लेकिन उस लिखाई को कोई नहीं समझ पाया। तब राजमाता ने कहा, तेरा दादा के समय में एक अति बुद्धिमान पुरुष होता था, जो तेरे पिता के रत्नों में से एक था। तब इब्रानी दास दानियल को बुलाया गया। उसने वहां का भ्रष्ट आचरण देखा। वे परमेश्वर में मंदिर के अभिषेक किए हुए पात्रों में मदिरा पीकर अपने देवी देवताओं का गुणगान कर रहे थे। दानियल ने उस राजा को झिड़कते हुए कहा, परमेश्वर ने तेरे दादा को ये विशाल साम्राज्य दिया था जो तेरे हाथों में आ गया है, परंतु तूने उस परमेश्वर के स्थान पर इन सोने चांदी के मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया है, और जिस परमेश्वर के हाथ में तेरी सांस है उसका तूने महिमा नहीं की। वे लोग जानते थे कि मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए परमेश्वर पर कितना आश्रित है। पौलुस कहता है, हम उसी में जीते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा उसी में अस्तित्व है। हम परमेश्वर पर आश्रित हैं, हमारी सांस उसके हाथ में है, परंतु उसी सांस से हम परमेश्वर को कोसते हैं। ये तो प्रकृति की रीति नहीं है। अध्याय 12 पद 11 से लेकर 25 तक। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वो ढा दे वो फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वो बंद करे वो फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वो वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वो जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाले दोनों उसी के हैं। वो मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वो राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। वो याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है। वो विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वो हाकिमों को अपने अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वो अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वो जातियों को बढ़ाता और उनको नाश करता है। वो उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वो पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहां रास्ता नहीं है भटकाता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के नाई डगमगाते हुए चलते हैं। परमेश्वर श्रेष्ठ है, वो मनुष्यों पर राज करता है। मनुष्य का प्राण और सांस उसके हाथ में है। परमेश्वर का विरोध कौन कर सकता है? परमेश्वर के उद्देश्यों और कामों का विरोध कौन कर सकता है?